सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुव मम पत्थसौखमणवज्रम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो मूल ग्रंथ षटखंडागम के ऊपर लिखी हुई है। षटखंडागम के रचयिता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार ये ग्रंथ लिखा था। हम 82 पेज पर आए हैं, 82। थोड़ा भी याद करते हम विषय कहाँ तक आए हैं उसकी हम देखते हैं बात। तो यहाँ जीवस्थान ग्रंथ है, तो जीवस्थान ग्रंथ है तो शुरू में मंगल किया, फिर उसका निमित्त हेतु आदि बता दिया, उसका प्रमाण भी बता दिया। प्रमाण कितने मालूम है? षटखंड आगम का 16,000 सूत्रों का। देखो यहाँ बात आई थी ना, 18,000। हाँ, कहाँ आ गई है? कर्ता के पहले आया था ना उसका प्रमाण। ग्रंथ का निमित्त फिर अवश्य हेतु और प्रमाण 61 पेज पर था। 18,000 मैंने भूल से 16,000 बताया। पदक की अपेक्षा 18,000 प्रमाण है, ये प्रमाण बताया था। षटखंडागम का प्रमाण है, धवला का प्रमाण नहीं। धवला तो विस्तृत टीका होगी, उससे भी ज्यादा। धवला का प्रमाण तो 72,000 श्लोक प्रमाण है, और यहाँ मूल जो ग्रंथ है षटखंडागम वो 18,000 प्रमाण है पद की अपेक्षा से। फिर जीवस्थानी ग्रंथ का नाम बताया, और ग्रंथ के कर्ता में अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता महावीर भगवान से वो गणधार वगैरह आचार्यों की परिपाटी पूरी बताई दर्शन आचार्य तक। और फिर पुष्पदंत और भूतबली की भी बात की थी, उसमें से वो किस तरह से वो जिनपालित को पढ़ाए और बाद में उन्होंने वो लिखा, उसकी भी बात हमने की थी। अब उसके बाद जो है वो अवतार चार प्रकार का होता है। वहाँ आई बात कि अभी ग्रंथ का अवतार होता है, तो उसमें अवतार चार प्रकार का बताया था पेज नंबर 73 के ऊपर। अवतार ग्रंथ का अवतार यानी ग्रंथ की उत्पत्ति, उसमें चार प्रकार बताए थे। उसमें पहला है उपक्रम, दूसरा निक्षेप, फिर नय और अनुगम। उसमें से हम उपक्रम की बात देख रहे थे, तो उपक्रम भी पांच प्रकार का होता है। उसमें अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अनुपूर्वी उपक्रम में हमने देखा था पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी, यानी शुरू से अंत तक कथन कर देना, या अंत से शुरू तक, या कहीं से भी, ऐसे तीन भेद उसमें थे। नाम के हमने 10 भेद देखे थे कि कौन कौन सी अपेक्षा से नाम बढ़ते हैं, तो वहाँ नाम के भी भेद देखे थे हमने। यानी वो जीव स्थान ये जो ग्रंथ है वो कौन सा नाम है, तो उसमें गौण्य पद नाम हमने देखा, उसके गुणों, जीव का स्वरूप उसमें बता रहे हैं ना, इसलिए जीव स्थान ये ग्रंथ है, वो गौण्य पद नाम है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रमाण में हमने देखा था कि जो प्रमाण यानी जो उसका प्रमाण के अलग अलग अर्थ होते, ज्ञान को भी प्रमाण कहते हैं। मान यानी ज्ञान, मान को भी यानी अकेला मान कहेंगे तो भी ज्ञान, प्रमाण कहेंगे तो भी ज्ञान। और प्रमाण का दूसरा अर्थ होता है उसका कितना, उसकी मेजरमेंट, प्रमाण यानी कितनी क्वांटिटी कितनी है, ऐसे हम कहते हैं इसका प्रमाण क्या लेना, हमको कोई चीज बनानी है, पदार्थ बनाना है तो कितने क्वांटिटी में पदार्थ लेना है, माप उसका, उसको भी प्रमाण कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था प्रमाण उपक्रम जो है वो द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नये प्रमाण, ऐसे प्रमाण के यहाँ पहले पांच अलग पद्धति से बताया और फिर बाद में प्रमाण के छह भेद भी अलग से बताएंगे, तो उसकी भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद में जो नए प्रमाण की बात भी हमने देखी थी कल, और 82 पेज पर आए थे, यानी प्रमाण के भेद में से वो नए प्रमाण हमने देखे थे। अब यहाँ 82 पेज पर आए हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। 82 पेज पर शुरू होता है, यहाँ से शंका है कि उन पांच प्रकार के प्रमाणों में से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और नय, यानी द्रव्य द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नय प्रमाण, इनमें से जीव स्थान ये जो ग्रंथ है वो कौन सा प्रमाण है, तो उसको कहते हैं यह भाव प्रमाण है। मति ज्ञान आदि रूप से भाव प्रमाण के भी पांच भेद है, यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसमें से इसलिए उन पांच प्रकार के भाव प्रमाणों में से इस जीव स्थान शास्त्र को श्रुत भाव प्रमाण रूप जानना चाहिए। ये तो कितने होते हैं भेद उसकी चर्चा है, फिर जीव स्थान ये ग्रंथ है उस पर कौन कौन से लागू होते हैं नए निक्षेप, उसकी बात यहाँ करेंगे। अब शंका फिर पूछते हैं, पहले कर्ता का निरूपण कर आए हैं, इसलिए उसके निरूपण कर देने से ही इस शास्त्र की प्रमाणता का निरूपण हो जाता है, अतः फिर से उसकी प्रमाणता का निरूपण करना निरर्थक है। कि जो मूल ग्रंथकर्ता महावीर स्वामी है, उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता गणधर आचार्य, अन्य आचार्य है, तो ये तो ज्ञानी जीव है, तो उनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना है वो तो प्रमाण ही है, तो यहाँ अन्य से फिर दोबारा प्रमाण बताने की क्या जरूरत थी, ऐसा प्रश्न है। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह जीव शास्त्र प्रमाण है, यह जीव स्थान शास्त्र प्रमाण है, अन्यथा वह जिनेन्द्र देव का कहा हुआ नहीं हो सकता था। जिनेन्द्र देव की बताई हुई जो जो बात है वो प्रमाण है, और जो जिनेन्द्र भगवान ने नहीं बताई है तो उसको हम प्रमाण नहीं कह सकेंगे, जो मूल से नहीं चली आ रही है। किसी ने अपनी मति कल्पना से कोई बात कि पुण्य करो पुण्य से भी धर्म हो जाएगा, तो ये बात तो प्रमाण नहीं हो सकती है। किसी रागी जीव ने, किसी अज्ञानी जीव ने कोई रचना की है तो उसको हम प्रमाण नहीं कहेंगे। प्रश्नकार का प्रश्न ही था कि जो जिनेन्द्र भगवान ने जो बताई बात है वो प्रमाण ही है, तो अब यहाँ फिर जीव स्थान को अलग से प्रमाण है ऐसा क्यों बताते हैं? तो उसका उत्तर है इस प्रकार, सामान्य रूप से इस जीव स्थान शास्त्र की प्रमाणता का निश्चय करने वाले शिष्य को बहुत प्रकार के भाव प्रमाणों में से यह जीव स्थान शास्त्र श्रुत भाव प्रमाण रूप है, इस तरह विशेष ज्ञान कराने के लिए। ये पहले भी हमने पढ़ा था, सामान्य शास्त्र तो उन्नम विशेषो बलवान भवेत, उसकी ज्यादा डिटेल्स बताने से वो अधिक दृढ़ हो जाता है। तो शिष्य को जानने की इच्छा है कि प्रमाण के इतने सारे भेद है, उसमें से जीव स्थान यह शास्त्र उसमें से कौन सा प्रमाण है, तो भाव श्रुत ज्ञान प्रमाण है। अभी वो जीव स्थान शास्त्र ये तो शाब्दिक रचना है, उसका ज्ञान जीव को होगा, वो भाव श्रुत ज्ञान है, या भाव श्रुत भाव प्रमाण के ही भेद बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान वगैरह, भाव प्रमाण तो श्रुत ज्ञान भाव प्रमाण ऐसा, या भाव श्रुत ज्ञान प्रमाण, इस तरह से लेना। श्रुत भाव प्रमाण रूप का है यहाँ, भाव श्रुत नहीं का, श्रुत भाव प्रमाण रूप ज्ञान, भाव प्रमाण का श्रुत वाला भेद लेना इसमें, चले। तो विशेष ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इसकी प्रमाणता का निरूपण किया है, अथवा पहले हमने पांच भेद देखे थे, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नय प्रमाण। अब प्रमाण के ही 6 भेद बताएंगे यहाँ। अथवा नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से प्रमाण 6 प्रकार का है। ये नाम कहीं सुने थे हमने? हाँ, किसमें आए थे? निक्षेप में, बराबर है। 6 निक्षेप होते हैं, कोई भी चीज बतानी है। हमने मंगल पर घटाया था तो उसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लगाना। वहां हमने क्या देखा था कि नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। अब यहाँ कैसे लगेंगे? अब यहाँ प्रमाण 6 प्रकार का बता रहे हैं। तो नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण। इसके आगे ऐसे ही 6-6 बातों पर घटाइए। कोई भी अभी समझो सामायिक, ये जो कोई विधि है उसकी बात अगर हमें समझनी है तो फिर वहाँ नाम सामायिक, ये अलग पद्धति से अभी यहाँ दोबारा उसकी डिवीजन कर रहे हैं। हम कहते हैं वर्गीकरण अलग पद्धति से कर रहे हैं। वहाँ हमने 5 में 5 ग्रुप्स बनाए थे, अब यहाँ 6 ग्रुप्स बना रहे हैं। अलग पद्धति से उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है। तो ये जो 6 अभी हमने देखे तो उसमें से प्रमाण ऐसी संज्ञा को नाम प्रमाण कहते हैं। हमने पहले देखा था ना नाम मंगल की बात क्या है, कोई चीज को विशिष्ट नाम देना उसको नाम मंगल, यानी उसको नाम निक्षेप हो गया उसको। तो ये प्रमाण, यह नाम क्या हुआ? नाम प्रमाण। अभी जो स्थापना होता है, स्थापना निक्षेप के 2 भेद होते हैं, एक सद्भाव स्थापना और एक असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना कहो या तदाकार स्थापना कहो, एक ही बात है। जैसे मूर्ति यानी मनुष्याकार होता है वह, और उसमें हम भगवान की स्थापना करते हैं, तो तदाकार स्थापना उसको सद्भाव स्थापना कहते हैं। और अतदाकार में उसका आकार के नहीं है फिर भी उसमें हम स्थापना करते हैं, जैसे शतरंज की वो क्या कहते हैं उसको, मोरे, हाँ, तो उसमें हम ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऐसी स्थापना करते हैं, ये राजा है, तो राजा के आकार तो है ही नहीं वहाँ, फिर भी उसमें हम उसकी स्थापना करते हैं, वो अतदाकार स्थापना है, उसी को असद्भाव स्थापना कहते हैं। तो यहाँ प्रमाण के भी स्थापना निक्षेप की अपेक्षा 2 भेद हो गए। कौन से? सद्भाव प्रमाण, सद्भाव स्थापना प्रमाण और असद्भाव स्थापना प्रमाण, ये प्रमाण 2 प्रकार का हो गया। अभी तदाकार वाले पदार्थों में सद्भाव स्थापना होती है और अतदाकार वाले पदार्थों में असद्भाव स्थापना होती है। अब द्रव्य प्रमाण की बात आएगी, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के 2 भेद याद है? हाँ, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अभी जरा उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। आगम द्रव्य निक्षेप में किसको लेना? हाँ, जो उस शास्त्र का ज्ञाता है, ये पहले बता देना। आगम में शास्त्र का ज्ञाता लेना, हाँ, और नो आगम में वो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, वो दूसरे किसी चीज की बात है, उसकी बात हम बात कर रहे हैं। तो शास्त्र का ज्ञाता है परंतु वर्तमान में उस उपयोग से रहित है शास्त्र के, यानी अभी प्रमाण संबंधी जो शास्त्र है उस प्रमाण संबंधी शास्त्र का ज्ञाता जीव, पर वर्तमान में वो उसका उपयोग उसमें नहीं है, वो अन्यत्र कहीं व्यापार में है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ द्रव्य निक्षेप की बात है। तो द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय को छोड़कर बात होती है, वर्तमान पर्याय वाला वो भाव निक्षेप में लेंगे हम। तो द्रव्य निक्षेप में हमने आगम द्रव्य निक्षेप जो है उसमें क्या लिया कि वो शास्त्र का ज्ञाता परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित ऐसा जो जीव है उसको हम आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे, आगम द्रव्य प्रमाण कहेंगे। अभी यहाँ प्रमाण की बात कर रहे हैं, आगम द्रव्य प्रमाण, यानी निश्चय से जीव को ही आगम द्रव्य प्रमाण कहा। परंतु ये जो द्रव्य श्रुत है वाणी या जो अक्षर रचना जो है लिखित रूप से, उसको भी आगम द्रव्य निक्षेप से आगम द्रव्य प्रमाण कहेंगे। ख्याल है? वो भी आगम है ना, आगम द्रव्य प्रमाण है। अब नो आगम द्रव्य प्रमाण की बात करेंगे। नो आगम में किसको लेना है? हाँ, अकेले शरीर को नहीं लेना। नो आगम में हमने 3 भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में अकेले शरीर को लेना, ज्ञाता जीव का शरीर लेना। कौन सा ज्ञाता? वर्तमान में प्रमाण, अभी हम प्रमाण की बात करें, वर्तमान में प्रमाण संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। ऐसे ज्ञाता जीव के शरीर की बात है ज्ञायक शरीर में। तो ऐसे शरीर तो वर्तमान का भी शरीर हो सकता है। जीव तो वर्तमान में यानी ज्ञाता जीव लिया है, उसका वर्तमान शरीर उसको कहेंगे वर्तमान ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य प्रमाण। उसी जीव का भूतकाल का शरीर उसको कहेंगे भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य निक्षे द्रव्य प्रमाण, प्रमाण लगाना आ गया। भूतकाल में जो हो चुका और जो भविष्य में शरीर धारण करेगा अगले भव का, उसको कहेंगे भावी न्यायक शरीर। वो भावी या भव्य, उसमें हमने नो आगम का डायरेक्ट जो था ना उसमें लगाया था, ये डायरेक्ट की बात नहीं हो रही। हाँ देखो देखो, एक मिनट, हम क्या है, बड़ा बड़ा है ना वो, तो खाली द्रव्य निक्षेप की बात शुरू करेंगे। द्रव्य निक्षेप के दो भाग है, आगम और नो आगम। आगम की बात हमने समझी, अभी खाली नो आगम के डायरेक्ट हम समझेंगे। नो आगम के मेन तीन भेद है, ज्ञायक शरीर, यहाँ शरीर को लिया है, और यहाँ भावी या भव्य, इसमें जीव को लेना है। ये वर्तमान में ज्ञाता है, ये भविष्य में ज्ञाता होगा, और ये जो तद व्यतिरिक्त, इसमें कर्म नोकर्म को लेना है। इसमें शरीर को लेना, यहाँ जीव को लेना, पर कौन सा जीव? अभी वर्तमान में ज्ञाता नहीं है, वो आगे चलकर ज्ञाता होगा, भविष्य काल में होगा। यहाँ जीव को लेना है, यहाँ शरीर को लेना है, और यहाँ कर्म नोकर्म आदि अन्य चीजों को लेना है। तो ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए थे, एक भूतकाल का ज्ञायक शरीर, वर्तमान का और भविष्य का। यानी भावी भेद ज्ञायक शरीर में भी आया है, और भावी भेद डायरेक्ट नो आगम का भी आ गया। तो इस भावी और इस भावी में क्या अंतर है? तो यहाँ वर्तमान ज्ञाता जीव का भविष्य शरीर है, और यहाँ वर्तमान में ज्ञाता ना, ये जीव भविष्य में ज्ञाता होगा, वहां शरीर की बात ही नहीं की है। वहां शरीर को नहीं लिया है, वहां जीव को लिया। कौन सा जीव? जो वर्तमान में नहीं जान रहा है परंतु वो भविष्य में जानेगा। वर्तमान में नहीं जान रहा है इसलिए उसको नो आगम कहा, ख्याल है ना? तभी देखो इस यहां से पढ़ेंगे। और फिर तद व्यतिरिक्त में अन्य लेना, हमने जब मंगल की बात की थी तो तद व्यतिरिक्त में तीर्थंकर नाम प्रकृति को लिया था, और नो कर्म में लौकिक और लोकोत्तर, ऐसे मंगल की वहां लिस्ट बताई थी, ख्याल है ना? ज्ञायक शरीर, भूत ज्ञायक शरीर के हमने और डिविजन्स किए थे, याद है किसी को? जो भूत यानी छोड़कर आया है, हाँ, तो चुत, चावित और त्यक्त। चुत का अर्थ होता है आयु पूरी हो गई, शरीर छूट गया, उसको चुत कहते हैं। चावित यानी कदली घात से मरण हुआ था, उसको चावित कहते हैं। और त्यक्त यानी जीव ने समाधि मरण पूर्वक जिसको छोड़ा था उसको त्यक्त कहते हैं। तो समाधि मरण भी तीन प्रकार का होता है, प्रायोपगमन वाला, इंगिनी मरण वाला, और भक्त प्रत्याख्यान, जो अंतर्मुहूर्त से लेकर 12 साल तक उसकी लिमिटेशन वेरिएशंस हो सकते हैं, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह से हमने डिटेल में पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि ये 6 नाम तो बार बार आने वाले हैं, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और द्रव्य में फिर आगम नो आगम। तो जब जब बहुत बीत जाएगा समय, हम फिर दोबारा उसको याद करेंगे, है? क्योंकि ये 6 ही प्रकारों से किसी भी बात को समझाया जाएगा, ये निक्षेप होते हैं, ये निक्षेपों की बात हमने देखी। हाँ देखो, तो अभी हमने देखे प्रमाण 6 प्रकार के हैं, उसमें प्रमाण ऐसा नाम, वो नाम प्रमाण हुआ, प्रमाण उसकी स्थापना जो सद्भाव स्थापना प्रमाण और असद्भाव स्थापना प्रमाण से दो स्थापना प्रमाण हो गए, दो भेद। द्रव्य प्रमाण के आगम द्रव्य प्रमाण और नो आगम द्रव्य प्रमाण, ऐसे दो भेद हो गए। अब यहां तक हम आए, आगम द्रव्य प्रमाण और नो आगम द्रव्य प्रमाण के भेद से, द्रव्य प्रमाण दो प्रकार का है, चौथी लाइन। अब प्रमाण विषयक शास्त्र को जानने वाले परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य प्रमाण कहते हैं। अभी अभी हमने बात की थी ना। अथवा शब्दों की अपेक्षा संख्यात भेद रूप, वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात भेद रूप और तदवाच्य अर्थ की अपेक्षा, वाच्य ने शास्त्र में जिसका कथन है उसकी अपेक्षा से अनंत भेद रूप ऐसे शब्द रूप आगम को आगम द्रव्य प्रमाण कहते हैं। यानी जो शास्त्र की रचना है या जो बताया जाता है, बोला जाता है शब्द, उसको भी आगम कहेंगे, आगम द्रव्य प्रमाण कहेंगे। अब नौ आगम द्रव्य प्रमाण की तीन भेद बताएंगे। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से नौ आगम द्रव्य के तीन भेद समझने चाहिए। अभी जो हमने देखे थे किसका? हाँ, तदवाच्य। तदवाच्य ने उसको बताने वाले वाच्य। देखो चौक ये है शब्द, वो है वाचक। तो जब हम चौक कहते हैं तो कौन सा पदार्थ हमें ख्याल में आता है? एक्चुअल चौक। तो ये चौक है वाच्य और चौक शब्द है वाचक। वाचक यानी बताने वाला और वाच्य ने जिसका जिसके संबंधी बताया जाता है उसको कहते हैं वाच्य। तब ये फिर हम देखेंगे तदवाच्य अर्थ।
तदवाच्य का अर्थ ऐसा होता है कि जिसको बताया गया है ऐसा पदार्थ। तद यानी वह, वाच्य यानी जो बताया गया है वह पदार्थ, और वाचक यानी जो शब्द है जिसके द्वारा वह पदार्थ बताया जाता है वह। तो तदवाच्य यानी जो बताया गया है वाच्य यानी पदार्थ, वो तदवाच्य हो गया।
हाँ, वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात भेद रूप। वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात शब्द तो संख्यात ही होते हैं। असंख्यात यानी जो जो उसको जानने वाले हैं वो कहेंगे। असंख्यात मनुष्य है, देव है, देव मनुष्य दोनों तीर्यंच नहीं शब्द कहेंगे। नहीं नहीं, आगम द्रव्य को जानने वाले वक्ता नहीं होंगे ना वे। देव और मनुष्य ले लो, वो जानेंगे मगर वक्ता नहीं होंगे ना। एक ख्याल में है तदवाच्य अर्थ। यानी शास्त्र में आत्मा ऐसा ऐसा बताया तो आत्मा यह शब्द हुआ वाचक, और जो आत्मा है वो उसका वाच्य पदार्थ हुआ। वाच्य अर्थ कहो या वाच्य पदार्थ कहो, यानी जिसके लिए वो नाम रखा है वो उसको कहेंगे हम वाच्य। अब ये नौ आगम के तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त भेद से नौ आगम द्रव्य के तीन भेद समझने चाहिए। उनमें ज्ञायक शरीर और भावी नौ आगम द्रव्य का वर्णन पहले कराए हैं हमने, देखे ना। ज्ञायक शरीर ने वर्तमान में जानने वाले जीव का भूत भविष्य या भावी, भूत भविष्य या वर्तमान का शरीर, उसको ज्ञायक शरीर कहा था। और भावी में जीव को लेना, परंतु वो जीव कैसा है वर्तमान में ज्ञाता नहीं है, वो भविष्य में, इसी भव में, भविष्य में या अगले भव में वो ज्ञाता बनेगा, तो उसको भावी में लिया था। अब जो तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य प्रमाण है वो संख्यात रूप, असंख्यात रूप और अनंत रूप भेद की अपेक्षा तीन प्रकार का है। उन्होंने खाली उसके प्रकार बता दिए ना, डिटेल बात नहीं किया। क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण का वर्णन पहले के समान ही करना चाहिए। अब भाव प्रमाण की बात, मति भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मनःपर्याय भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण के भेद से भाव प्रमाण पांच प्रकार का है। इनमें से, अब ये जीव स्थान शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी बात कहेंगे। इनमें से यह जीव स्थान नाम का शास्त्र भाव प्रमाण की अपेक्षा श्रुत भाव प्रमाण रूप है और द्रव्य की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत रूप शब्द प्रमाण है। अब वक्तव्यता तीन प्रकार की है। ये वक्तव्यता किसका भेद हम देख रहे हैं? भूल गए ना, 73 पेज निकालना। उपक्रम के भेद हम देख रहे हैं। पहले में पहले ग्रंथ का अवतार होता है, उसमें चार बातें बताई जाती है, एक उपक्रम। ये अनंत कैसा, उसका भेद निकालना पता नहीं, उसको भाव उसका अनंत हो सकता है, क्यों शब्दों में वो भाव अनंत होता है, इस तरह से शब्द अनंत तो नहीं होंगे, शब्दों में जो भाव है, जैसे केवल ज्ञान ये शब्द है, तो उस शब्द बताता है भाव को, क्या भाव बताता है, तो केवल ज्ञान की अनंत शक्ति को बताता है, तो इस तरह से उसको हम ले सकते हैं, इसे लगता है मुझे। और कोई विशेष अर्थ हो तो देखना, क्यों अरविंद भाई? ज्ञान ने अर्थ नए अकेले पदार्थ को जानता है, इसको पदार्थ, और शब्द नए उसको बताने वाले शब्द को जानता है। वो शब्द अनंत भाव वो बताता है ना, क्योंकि भाव प्रमाण के भेद कर रहे, शब्दों में भाव कितना बताया है उसकी बात है, शब्द अनंत की बात नहीं है। देखो शब्द तो संख्यात होते, यहाँ लिखा थे शब्द रूप आगम को, वो तो बात हो गई थी वहां, यहाँ शब्द रूप भाव की बात चल रही, भाव प्रमाण में शब्द को लिया है। जैसे मिथ्यात्व को भी अनंत कहते हैं, या कोई हम कहेंगे कर्म है तो उसमें कितनी शक्ति है, तो वो शब्द उस शक्ति को बताने वाला है, उस अपेक्षा से यहाँ ले सकते हैं। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, ग्रंथ का अवतार हुआ उसमें चार बातें बताई थी, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। उपक्रम के हम भेद देख रहे थे, तो उपक्रम में सबसे पहले में पहला क्या था, अनुपूर्वी, हाँ, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी। उसके बाद नाम देखा हमने, नाम के 10 प्रकार देखे, नाम के बाद प्रमाण, अभी उसके 6 भेद देखे, 6 या 5, 2 प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किए, 6 वहां तो 6 ही लिखे, ख्याल है ना, अभी हमने जो देखे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वगैरह, कल 5 देखे थे, आज 6 देखे। तो प्रमाण के बाद अभी हम क्या देख रहे हैं, वक्तव्यता। वक्तव्य ने क्या, वक्ता ने क्या समझते हैं, बोलने वाला, वक्तव्य यानी उसका जो कथन है वक्तव्य, और वक्तव्यता यानी जो बताया जा सकता है उसको वक्तव्यता कहते हैं, उसका वो भाव अभी पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। तो ये वक्तव्यता वाला उपक्रम अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यानी उपक्रम का ये चौथा भेद देख रहे हैं हम, और एक भेद होगा बाद में, हाँ, क्या नाम उसका, अर्थाधिकार, हाँ मैंने भी देखा नहीं अभी, 73 पेज पर ये सब चला रहे, अर्थाधिकार। हाँ, अब ये जो वक्तव्यता 3 प्रकार की है उसको देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, देखो, स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता, उभय यानी दोनों, तदुभय यानी वे दोनों, एक तो स्वसमय बताने वाला, परसमय को बताने वाला और दोनों को बताने वाला। तो जिस शास्त्र में स्व समय का ही वर्णन किया जाता है, यहाँ स्व समय से क्या लेना, हाँ अभी शुद्धात्मा, आत्मा ये सब बताने हैं जीव के बारे में, क्या ना, पहले हमने जो देखा था तत्कालीन स्व समय पर समय आचार्य के उसमें लिया था, तो वहां तो जैन दर्शन और अन्य दर्शन ऐसा अर्थ किया था, ख्याल है ना। तभी क्या कहते हैं, जिस शास्त्र में स्व समय का ही वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है अथवा विशेष रूप से ज्ञान कराया जाता है, उसे स्व समय वक्तव्य कहते हैं। वक्तव्य किया ना, वर्णन किया, तो ये उसको कहेंगे वक्तव्य, और उसके भाव को अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को स्व समय वक्तव्यता कहते हैं। जैसे मानव और मानव का भाव क्या है, मानवता। सा लगाते ना, सा लगाते कहीं त्व लगाते हैं, जैसे वृक्ष और उसका भाव क्या है, वृक्षत्व। माता और उसका भाव है मातृत्व। वैसे यहाँ स्वसमय वक्तव्य, वक्तव्य ने वर्णन करना, और उसका जो भाव है, उसका जो पना है, वर्णन करने रूप पना, तो उसको कहेंगे स्वसमय वक्तव्यता। वो शास्त्र में क्या है, स्वसमय वक्तव्यता है, ऐसा कहेंगे। और परसमय मिथ्यात्व को कहते हैं, उसका जिस प्रावृत या अनुयोग में वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विशेष ज्ञान कराया जाता है, उस प्रावृत या अनुयोग को, प्रावृत कहो पाउड कहो, यानी जो शास्त्र हम कहेंगे अपनी भाषा में, उसको परसमय वक्तव्य कहते हैं। मिथ्यात्व संबंधी जिसमें कथन किया हो, वो क्या वर्णन किया है, उस वर्णन को क्या कहेंगे, परसमय वक्तव्य। वक्तव्य ने, वक्ता ने जो बताया उसको वक्तव्य कहेंगे, और वो बताने का जो भाव वक्तव्यता कहला है ना, और उसके भाव को अर्थात उसमें होने वाली विशेषता को परसमय वक्तव्यता कहते हैं। यानी स्वसमय वक्तव्यता में क्या है, उस शास्त्र में आत्मा की, जीव की अपनी बात करेंगे, यानी जैन दर्शन के अनुसार उसमें बात होगी। और परसमय वक्तव्यता उसमें तो मिथ्यात्व संबंधी निरूपण, वो भी जैन शास्त्रों में परसंबंधी निरूपण होगा मिथ्यात्व संबंधी। जैसे हम अपनी सच्ची मान्यता क्या है जहाँ निरूपण किया है, वहाँ पर का खंडन भी किया जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, ईश्वर किसी का करता नहीं, ऐसे हम स्वसमय से बात करेंगे तो मिथ्यात्व की मान्यता क्या होती कि निमित्त से कार्य होता है। ये जो मिथ्या मान्यताएं है उसका भी वहाँ निषेध किया जाएगा, तो उसमें दोनों का वर्णन कहीं तो दोनों का होगा, अपना मंडन और पर का खंडन। तो जिसमें अकेले शुद्धात्मा की बात होगी, स्वसमय की बात होगी, उसको स्वसमय वक्तव्यता कहेंगे। और जिसमें मिथ्यात्व संबंधी जो उनकी मान्यता ही खाली बताई जाएगी, उसको परसमय वक्तव्यता कहेंगे। जहाँ पर स्वसमय और परसमय इन दोनों का निरूपण करके परसमय को दोषयुक्त दिखलाया जाता है, ख्याल है ना, स्वसमय का भी बात कहेंगे, परसमय की भी कहेंगे। ये जो कंपेरेटिव स्टडी होती है, अन्य अन्य जो इजम्स है, दर्शन है, तो जैनियों का ये कथन है, ये इनका वैदिक का ये है, ये बुद्धिज्म का है, ऐसे सबका कथन करेंगे, वो कथाएं होती है। हाँ, तो इसमें ये, इसमें अलग ये जो क्या है, स्वसमय वक्तव्यता और परसमय, और कहीं पर दोनों बताए जाएंगे, स्वसमय का भी कथन करेंगे, परसमय का भी करेंगे, और परसमय कैसा झूठ है उसको बताएंगे। क्योंकि अपने ही अंदर अभिप्रायों में कहीं ना कहीं कुछ खोटी मान्यता होती है, उसका निराकरण इस तरह से होता है। देखो क्या कहते हैं, जहां पर स्वसमय और परसमय इन दोनों का निरूपण करके परसमय को दोषयुक्त दिखलाया जाता है और स्वसमय की स्थापना की जाती है, उसे तदुभय वक्तव्य कहते हैं। तद उभय यानी दोनों, स्वसमय का भी कथन किया और परसमय का भी कथन किया, और उसके भाव को अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को तदुभय वक्तव्यता कहते हैं। इसमें से अब ये जीव स्थान शास्त्र जो है उसमें क्या बताएंगे, तो इस जीव स्थान शास्त्र में स्वसमय वक्तव्यता समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्वसमय का ही निरूपण किया गया है। हम क्या कहते हैं, अरे इसमें द्रव्यानुयोग नहीं, द्रव्यानुयोग कुछ कार्य करनी, अरे ये स्वसमय का वर्णन है इसमें, ख्याल है ना, जीव संबंधी वर्णन है, आत्मा का वर्णन है। अभी आत्मा बंधा हुआ है तो उसके बंधने में क्या बंधन है वो सब बताएंगे, और कैसा छूटता है वो भी बताएंगे। तो ये करणानुयोग अपने कार्य करने ऐसा कुछ नहीं इसमें, ये तो जीव संबंधी सभी प्ररूपणाएं, जीव स्थान है तो जीव संबंधी प्ररूपणाएं इसमें होगी सब। समय सार में भी बताए ना कि मैं कैसा आत्मा दिखाऊंगा, एकत्व विभक्त आत्मा की मैं चर्चा करूंगा। एकत्व ने स्व से एकत्व, और विभक्त आत्मा ने पर से विभक्त। तो अभी यहाँ हम 20 प्ररूपणाएं देखेंगे, तो हम तो उनकी डिवीजन करेंगे जीवों की, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, फिर उसमें क्या समझना कि संयोग की अपेक्षा वहाँ एक इंद्रिय आदि शरीर है, वैसी यानी ज्ञान की हीनता वगैरह आदि है, परंतु जीव का स्वरूप इनसे भिन्न है, परंतु वे है ना एक्चुअली, कि जैसे वैदिक कहते आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध 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 है, यानी उनको ये बाकी कुछ जो संयोग है, जो कुछ अवदयकारी भाव है, जो कुछ विकार है, उसको स्वीकार ही नहीं करते, तो आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध है तो ये मोक्ष मार्ग का वहाँ उपदेश क्यों दे रहे हैं, पर कुछ है ही नहीं है, माया है माया है, ऐसा कर देते हैं, यानी उसके सही उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आता। जो बात हम शुद्ध नहीं से करते हैं वो सर्वथा मान लेते हैं, ख्याल है ना, हाँ पर ये को मानते नहीं, आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध है तो अभी शुद्ध करने का सवाल कहाँ रहा, तो फिर ये बाकी सब ये कटाटोप क्यों, तो ऐसे कन्फ्यूजन वाली बात है उनमें। एक नए से जो हम स्वीकार करते हैं, जब हम नए से स्वीकार करते हैं तो दूसरी बात का स्वीकार है ऐसा उसमें गर्भित है, जब हम शुद्ध नए से कहेंगे आत्मा शुद्ध है त्रिकाल है ऐसा इसी बात करेंगे, सामान्य की बात करेंगे, सामान्य को शुद्ध कहा जाता है, परंतु पर्यायों में जो कुछ उसके विकार है, पर्यायों में जो कुछ यानी संयोग में जो कुछ शरीर आदि है, उसका भी वहाँ स्वीकार होता है। यदि उसका स्वीकार नहीं है और अकेला आत्मा शुद्ध बुद्ध है करके अभी चलो अंतरंग में लीन नहीं हो जाएगा, तीन काल में नहीं होगा, क्योंकि वो परिपूर्ण ज्ञान ठीक हो जाएगा जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हुए बिना, जिस आत्मा का हमको अनुभव करना है उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा। रागी द्वेषी आत्मा का तो हम अनुभव कर ही रहे, हमें कैसे आत्मा का अनुभव करना है कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है शुद्धात्मा स्वरूप स्व किसमें स्थापित करना है, तो उसकी बात यहाँ बताएंगे सब। तो ऐसा नहीं समझना कि ये कुछ कार्यकारी नहीं है, यहाँ जीव का ही स्वरूप बताया जाएगा, इसका नाम ही जीव स्थान है, स्थान इन्हें भेद अलग अलग अपेक्षाओं से उसमें भेद करते जाएंगे हम। अब यहाँ पांचवा जो पॉइंट आता है अर्थाधिकार, ये उपक्रम का पांचवा भेद। उपक्रम हमने देखा था, अनुपूर्वी देखा, फिर नाम देखे, प्रमाण, वक्तव्यता और अभी अर्थाधिकार। अब ये अर्थाधिकार के भी तीन भेद हैं, प्रमाण, प्रमेय और तदुभय। तद यानी वह, उभय यानी दोनों, ऐसे अधिकार अर्थाधिकार के तीन भेद हैं। इनमें से इस जीव स्थान शास्त्र में एक प्रमेय अर्थाधिकार का ही वर्णन है, क्योंकि इसमें प्रमाण के विषयभूत प्रमेय का ही वर्णन किया गया है। प्रमाण ज्ञान को कहते हैं, सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है, अब उसका विषय क्या है उसको हम प्रमेय यानी गेय कहेंगे, तो उस गेय यानी जीव का वर्णन है ना इसमें, तो प्रमेय का वर्णन है, तो प्रमेय अर्थाधिकार का ही वर्णन है, क्योंकि प्रमाण का विषयभूत ऐसा जो प्रमेय है उसी का यहाँ वर्णन है। इस तरह उपक्रम नाम का प्रकरण समाप्त हुआ, वो प्रकरण हुआ है, वो प्रकरण करना उसका। अब पहले हमने उपक्रम देखे थे, हाँ देखो, प्रमाण यानी ज्ञान और प्रमेय यानी गेय, ज्ञान जिसको जानता है उसको प्रमेय कहते हैं, और तदुभय ने दोनों का जिसमें निरूपण होगा प्रमाण और प्रमेय का उसको तदुभय कहेंगे। अब यहाँ अगला पॉइंट 84 पेज पर निक्षेप की बात करेंगे। हमने पहला जो उपक्रम वाला है भेद, वो उपक्रम वाला भेद किसका देखा था हमने, 73 पेज पर आप रिफर करना बार बार, हाँ वहाँ लिखा था ग्रंथ का अवतार होता है, अवतार यानी ग्रंथ की उत्पत्ति होती है, तो उसमें चार बातें बताई, एक तो उपक्रम, दूसरा निक्षेप, फिर नए और अनुगम। हाँ तो अभी निक्षेप की बात यहाँ होगी। अब जीव स्थान पर निक्षेप लगाने हैं, पहले हमने प्रमाण पर निक्षेप लगाए थे, बराबर, यानी क्या कहा था, नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, हाँ अभी जीव स्थान पर निक्षेप लगाना है, तो कैसे कहेंगे, देखो यहाँ नाम जीवस्थान, सांपना जीवस्थान, द्रव्य जीवस्थान, भाव जीवस्थान के भेद से निक्षेप चार प्रकार का है। कई कई छह के बदले में चार में ही शॉर्ट में बता देते हैं, नाम, सापना, द्रव्य और भाव। हाँ, जीव स्थान इस प्रकार की संज्ञा को नाम जीव स्थान कहते हैं, यानी उस ग्रंथ का नाम ही जीव स्थान है तो उसको हम नाम जीव स्थान कहेंगे। जिस द्रव्य में बुद्धि से जीव स्थान की आरोपणा की हो उसे स्थापना जीव स्थान कहते हैं। आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य जीव स्थान दो प्रकार का है, हमने देखा ना, द्रव्य यानी आगम द्रव्य जीव स्थान और नो आगम द्रव्य जीव स्थान। तो आगम द्रव्य जीव स्थान में किसको लेना, कि जीव स्थान शास्त्र को जानने वाला वर्तमान में उसके उपयोग से रहित ऐसे जीव को क्या कहेंगे, आगम द्रव्य जीव स्थान, है ना, ये अटपटा हो जाता है ना बहुत। हाँ, वहाँ प्रमाण की बात कहते हैं, पहले हमने मंगल की बात देखी थी, अभी जिसकी बात कर रहे हैं उसको आखिर में रखना, अभी उसका कौन सा निक्षेप की बात चल रही है, द्रव्य निक्षेप की, तो उसके पहले द्रव्य लगाना, अभी द्रव्य निक्षेप वाला भी कौन सा भेद है, तो आगम वाला है, तो उसको है ना आगम द्रव्य जीव स्थान। यहाँ जीव की बात चल रही है, वर्तमान में उसका ज्ञाता है परंतु उपयोग से रहित है ऐसा जीव लेना। वर्तमान पर्याय से युक्त वाले को हम भाव निक्षेप में रखते हैं, इसलिए वर्तमान पर उपयोग से रहित जीव यहाँ लेना। तो आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य जीव स्थान दो प्रकार का है, उनमें जीव स्थान शास्त्र के जानने वाले किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य जीव स्थान कहते हैं। अब ये आगम को शब्द रचना को भी कहेंगे, उसकी बात यहाँ नहीं लिखी है। अब ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त भेद से नो आगम द्रव्य जीव स्थान तीन प्रकार का है। तो ज्ञायक शरीर में हम किसको लेंगे, कि वर्तमान में ज्ञाता जीव है उसके शरीर की बात है यहाँ, यानी वर्तमान में ज्ञाता परंतु वर्तमान उपयोग से रहित ऐसे जो जानने वाला जो जीव है उसका वर्तमान का शरीर या भूतकाल का शरीर या भविष्य का शरीर, उसको ज्ञायक शरीर में लेंगे। भावी वाला जो भेद है उसमें वो ज्ञाता नहीं है वर्तमान में परंतु वो जीव आगे चलकर शास्त्र का ज्ञानी होने वाला है, जीव स्थान शास्त्र पढ़ने वाला है, तो उसको हम भावी नो आगम द्रव्य जीव स्थान कहेंगे। अभी हम वर्तमान में इसको नहीं जान रहे और भविष्य में जानने वाले हैं, है ना, हाँ। अभी पूरे ज्ञाता नहीं बने ना अभी। तो ये नो आगम द्रव्य जीव स्थान तीन प्रकार का, इनमें से आदि के दो अर्थात ज्ञायक शरीर और भावी सुगम है, यानी समझने में आसान है, सुगम यानी समझने में इजी है। जीव स्थानों के अथवा जीव स्थान शास्त्र के आधारभूत आकाश द्रव्य को तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव स्थान कहते हैं। आकाश द्रव्य को लिया यहाँ, वो शास्त्र जिस आकाश क्षेत्र में है उस आकाश के क्षेत्र को तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव स्थान कहा। आगम और नो आगम के भेद से अभी भाव निक्षेप की बात करेंगे, उसमें भी आगम और नो आगम दो भाई थे। जैसे द्रव्य में आगम और नो आगम कहा, द्रव्य में जब आगम कहा था आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, तो आगम द्रव्य को क्या कौन सा लिया, कि शास्त्र का जानकार जीव परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग से रहित। अभी आगम भाव में किसको लेना, ज्ञाता जीव और वर्तमान में उसी में उपयोग है उसका, वो भाव होगा यानी आगम भाव निक्षेप। देखो आगम और नो आगम के भेद से भाव जीव स्थान दो प्रकार का है, जीव स्थान शास्त्र के जानने वाले और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त जीव, यहाँ युक्त लेना, भाव निक्षेप में उसमें युक्त लेना, और द्रव्य निक्षेप हमने देखा था उसमें जानने वाला परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित ऐसा जीव लिया था। ये दोनों में डिफरेंस है। उस जीव को आगम भाव जीव स्थान कहते हैं। जानने वाले जीव को लिया, जो जीव जीव स्थान शास्त्र संबंधी ज्ञाता है और वर्तमान में उसी में उपयोग है, उस जीव को आगम भाव जीव स्थान कहते हैं, ख्याल है ना। और मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समासों को, मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समास है ने कौन से, हाँ बोलो भाई, मिथ्यात्वादी है ने, हाँ गुणस्थानों की बात है, यहाँ 14 गुणस्थानों की बात है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का भी नाम है। कहीं कहीं मिथ्यात्व लिखते हैं, कहीं मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि सासाधन इस तरह से मिश्र अविरत सम्यक्त्व।
देखो यहाँ गुणस्थान का दूसरा नाम जीव समास है, और यहाँ गुणस्थान के बदले में जीव समास ऐसा शब्द प्रयोग आया है। अभी आप
वो 14 जीव समास की बात,
पर्याप्त अपर्याप्त वाले जीव समास में मत,
एक इंद्रिय के दो भेद, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय के दो भेद, फिर पर्याप्त अपर्याप्त, ये जो हमने 14 जीव समास देखे थे उसकी यहाँ बात नहीं है। गुणस्थानों को भी 14 जीव समास कहने में आता है, इसलिए उन्होंने मिथ्या दृष्टि आदि शब्द लिखा। मिथ्यात्वादी क्या है, गुणस्थानों के नाम है वे 14, यहाँ समझना। हाँ आया है, हाँ उसी में गुणस्थान जहाँ है ना, गुणस्थान की परिभाषा वाला जो है जीव समास ऐसा उसमें शब्द आया है, बराबर है। वो जो गुणस्थान प्रवेशिका हमने सीखी ना उसमें भी है वो। जीव स्थान शास्त्र को जानने वाला और वर्तमान में उसमें उपयोग है ऐसा जीव। जब हम जीव स्थान शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी अभी तो हमने शुरुआत नहीं की है, अभी तो यानी जस्ट बिगिनिंग, मंगलाचरण चल रहा है ना। तो जीव स्थान शास्त्र को जानने वाले और हम उसमें में उपयोग है हमारा, तब क्या कहेंगे हम, आगम भाव जीव स्थान। आगम यानी वर्तमान में वो जानने वाला जीव को ही आगम कहा, जब द्रव्य में क्या है उसमें उपयोग रहित जीव लिया, और भाव निक्षेप में वर्तमान में उसी में उपयोग है उसका ऐसा जीव लिया। ये द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में यही डिफरेंस है। द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत या भविष्य की पर्याय लेना द्रव्य निक्षेप में, और भाव निक्षेप में वर्तमान की लेना, उसमें आगम यानी आगम का जानकार जीव, जीव को ही यहाँ आगम भाव निक्षेप से आगम भाव जीव स्थान का, यानी ये मेनली ऐसे ही आगम किसको कहना, वो जानने वाले जीव को ही आगम कहा है, और उपचार से इसको आगम कहते हैं। हाँ वो जानने वाले को ही कहते हैं, वही श्रुत है, और उपचार से बाह्य को इसको भी श्रुत ऐसी संज्ञा दी जाती है। उसकी यहाँ बात ही नहीं है। देखो ये क्या कहते हैं, फिर सुनना। देखो मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समासों को, यानी ये जो 14 गुणस्थान है उनको नो आगम भाव जीव स्थान कहते हैं। इनमें से इस जीव स्थान शास्त्र में नो आगम भाव जीव स्थान निक्षेप प्रकृत है, इस तरह निक्षेप का वर्णन हुआ। देखो नो आगम भाव किसको कहा था, पहले निकाल के देखो, मंगल की उसमें भी क्या ये शब्द हमें नए है ना, हाँ 27 के आगे होगा क्या, मिला क्या आपको, वो द्रव्य मंगल आया वहाँ, नहीं 29 के आगे है, 31 पेज पर है, देखो 30 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, वहां मंगल की अपेक्षा बात की है, यहाँ मंगल के बदले जीव स्थान हम शब्द डाल रहे हैं, बराबर। अब यहाँ कैसे डिवीजन किया उन्होंने, देखो वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते, मिला सबको, वह आगम भाव मंगल और नो आगम भाव मंगल के भेद से दो प्रकार का है। आगम सिद्धांत को कहते हैं, इसलिए जो मंगल विषयक शास्त्र का ज्ञाता होते हुए, अब यहाँ हम कहेंगे जीव स्थान शास्त्र का ज्ञाता होते हुए, वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, उसको आगम भाव मंगल कहते हैं। यह तो बात, ये तो हमें भी समझ में आएगी। नो आगम भाव मंगल उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से दो प्रकार का है। जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं, और मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेन्द्रिय आदि की वर्णना वंदना वगैरह रूप जो परिणत जीव है उसको तत्परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। अब यहाँ ये मंगल रूप शास्त्र की भी क्या कहते, यहाँ कौन सा है, तत्परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, कौन से आगम के बिना ही, यानी आगम के आधार के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त होता है, मंगल के अर्थ में वो उपयुक्त है, उपयुक्त है ना, उसमें उपयोग है उसका, मंगल रूप पदार्थ के में उसका उपयोग है, पहले शास्त्र के द्वारा उसका उपयोग था, आगम में उसका उपयोग था, आगम में जानने में उसका उपयोग था, अभी वो शास्त्र के बिना ही, आगम के बिना ही वो मंगल पदार्थ में उपयुक्त ऐसा जीव है। वो नो आगम भाव मंगल कहेंगे उसको। अब यहाँ कौन सी बात करें उसको देखेंगे जरा, फिर अर्थ लगेगा अपने को। या नीचे से तीसरी लेने, मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समासों को नो आगम भाव जीव स्थान कहते हैं, इनमें से इस जीव स्थान शास्त्र में नो आगम भाव जीव स्थान निक्षेप प्रकृत है। यानी यहाँ अभी ये जो कुछ 20 प्ररूपणाएं वगैरह करेंगे तो यहाँ कौन सा जीव स्थान में कौन सा निक्षेप है, तो नो आगम भाव जीव स्थान, इस तरह निक्षेप का वर्णन हुआ। ये निक्षेप किसका भेद चल रहा है अपना, अवतार का। अवतार का पहला भेद हमने उपक्रम देखा, दूसरा निक्षेप देखा, अब नयों की बात होगी, और फिर अनुगम। अब यहाँ जो है, नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे लोक व्यवहार में हम नयों का सतत उपयोग करते रहते हैं, परंतु वो नय का कथन है ये हमारे ख्याल में नहीं आता है, उसके बिना हमारी बात ही नहीं होती है। ऑफ कोर्स उसको सम्यक नय नहीं कहेंगे, परंतु उसके लोक व्यवहार में तो हम किसी अपेक्षा से बात करते हैं और समझ भी जाते हैं। जैसे हमने आपको पूछा, आप चाय के कॉफी, पूरा नहीं बोलते कि आप क्या पियोगे, चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे, अश्विन में आप चाय के कॉफी तो मैं दूध तो इतना शॉर्ट में बता देते हैं अब, है ना। तो वैसे ये तो जाते समय रास्ते पर है, हम क्या बोलते हैं, टैक्सी यहाँ आओ, तो टैक्सी आपकी सुनती है, तो टैक्सी वाले को बुलाना है तो ये टैक्सी। तो ये सारे जो प्रयोग होते हैं तो वो नए के प्रयोग कहलाते हैं, वहां तो बराबर समझते हैं, और जो शास्त्र में जो ऐसी कोई शॉर्टकट वाली बात आई है, देखो यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, समझो समझो, तो फिर एक दूसरे के वाद विवाद का मुद्दा बना लेते हैं, उसमें से सही अर्थ ग्रहण करके अपना कल्याण करना ये मेन प्रयोजन है शास्त्र का, परंतु वो शब्द को पकड़ पकड़ कर एक दूसरे से फिर वो तो वाद विवाद चलता रहता है, अन्य अन्य अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, अन्य अन्य कुछ मिथ्या मान्यताएं चलती रहती है। अब यहाँ क्या कहते हैं, नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता है, इसलिए यहाँ पर नयों का वर्णन करते हैं। उन नयों का खुलासा इस प्रकार है, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के, ये पहला कंडीशन क्या है, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई ने जानी हुई वस्तु हमने सभी एंगल से जानी है। अब उसके एक एंगल से बात करेंगे। यदि हम सभी एंगल से नहीं जानते और एक ही एंगल को हम सर्वथा प्रस्तुत करते तो यह हमारा सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। पहले प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु है, यानी वो ज्ञान सम्यक है, ये सिद्ध हुआ। अब उसको एक एक अंश को मुख्य करके हम उसकी बात करेंगे। अन्य को हमने स्वीकार किया है, जाना भी है, परंतु अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको कहना गौण। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्यात्मक है। जब हम नित्य की बात करेंगे तो हमको अनित्य का स्वीकार है, परंतु हम अनित्य के बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम नित्य पक्ष का स्वीकार अभी बताएंगे कि इस अपेक्षा वस्तु नित्य है। अपेक्षा भी बताई और नित्य उसका भी कथन किया, तो उसमें क्या है कि हमने पहले नित्यात्मक वस्तु को जाना है और अभी उसमें से किसी एक अंश का हम वर्णन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, ख्याल है ना? क्या कहते हैं, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को नहीं कहते। अकेले एक अंश को नहीं जान रहे, उस एक अंश में पूरी वस्तु हमने डाल दी। पहले तो वस्तु के सभी हमने एंगल जाने, जैसे सोने की बंगड़ी, सोने को भी स्वीकार किया और बंगड़ी नाम के पर्याय को भी स्वीकार किया, तो सोने की बंगड़ी ये प्रमाण हुआ। अभी हम सोने की दृष्टि से उसको देखते, पहले हमने स्वीकार किया, प्रमाण से जाना है कि ये सोने की बंगड़ी है, तो अभी हमें निश्चित करना है कि इसमें सोना कितना है, तो हम सोने की दृष्टि से उसको देख रहे, तो वहाँ हम डिजाइन आदि की बंगड़ी की, उसके साइज की कुछ बात नहीं कर रहे, उस पर विचार भी नहीं कर रहे, तो हमारा विचार ये सोना है, इस तरह से चल रहा है। तो ये प्रमाण से ने सोने की बंगड़ी दोनों को स्वीकार करके अब हम सोना को मुख्य करके उसकी बात कर रहे, उसका विचार कर रहे, तो क्या कहेंगे हम, ये नए से हम जान रहे उसको। अभी हम सोने को गौण करेंगे, कैसा डिजाइन है, क्या है। लोक व्यवहार तो ऐसे ही चलता है, जब हम सुना दुकान में जाते हैं किसी जवाहरे के पास, तो हमने चूज करना है हमको, तो बंगड़ी का हम डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी तरह से सब देख लिया, तो पैसा देने जाते या हम लेने जाते हैं, पैसे का जब व्यवहार होगा तब अभी हम वो डिजाइन को गौण करते। पहले तो हमने निश्चित किया था कि हमको ये बंगड़ी लेनी है, और जब भी पैसा देने का टाइम आया तो क्या देखते हैं, उसका वजन देखते हैं, तो वजन में हमको पूरी गारंटी है ना कि हमारा डिजाइन उस वजन में आने वाला है। सोने के सभी गुण अभी हमने वो कितनी पिलास है वो सब पहले देख लिया था, हमने उसका स्वीकार भी किया था, परंतु अभी जब हम उसको तोलते हैं तो हमें ये भरोसा है कि उसके पूरा यानी पूरा ही सोना वजन रूप से देखते हैं, उसमें अन्य गुण नहीं है कि उसी समय है, परंतु अभी एक रूप से हमें पूरा ही सोना दिखाई देता है, वजन के रूप से हम लेते हैं तो हमें पता है कि उसका डिजाइन उसका पीलापन सब उसमें है और वो हमें मिलने वाला है, तो वहां तो हमें कोई घबराहट नहीं होती कि वजन की अपेक्षा लेकिन हमारे डिजाइन कहीं चला नहीं जाए है? तो जब हम शुद्ध आत्मा की बात करते हैं तो उसमें पर्याय है कि नहीं है कि नहीं, इसकी चर्चा चलती है। अरे सब है, अभी उसकी बात मत करना, उसकी बात उठाएंगे तो जिस शुद्धात्मा की बात करनी है वो नजर में नहीं आएगा, ख्याल है ना? ये तो ये नए की कमाल है, ये श्रुत ज्ञान में होते हैं नए, एक को गौण करना दूसरे को मुख्य करना। तो क्या प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को नए कहते, ये पूरी वस्तु उस एक नए रूप से दिखने लगती उस समय, जिस समय हम किसी एक विशिष्ट नए के द्वारा देखते, ये हमारी नजर का कमाल है। किसी चीज को कैसे देखना ये अपने नजर का, उसी को हम नए कहेंगे। किस दृष्टि से हम देखते, ये पूजा में एक आता है कि हे भगवान आप जिस दृष्टि से अपने आप को देखते हो उसी दृष्टि से मैं अपने को देखूंगा तो मैं भी भगवान हो जाऊंगा, क्योंकि हम तो उस दृष्टि से नहीं देखते ना, हम अपनी कोई अन्य मतिकल्पना से अन्य दृष्टि से देखते, अरे मैं तो शरीर हूँ ऐसा देखते हैं। तो जिस दृष्टि से भगवान अपने आप को देख रहे उसी दृष्टि से हम अपने आप को देखेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये दृष्टि यानी ये नए की बात होगी। वहां वह नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेद से दो प्रकार का है। द्रव्यार्थिक यानी वहां द्रव्य की मुख्यता है, पर्याय को गौण कर दिया है। पर्यायार्थिक में पर्याय की मुख्यता है, द्रव्य की बात अभी हम नहीं कर रहे, स्वीकार है द्रव्य का, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य के बिना होती नहीं है, परंतु हम द्रव्य को पर्याय रूप से देख रहे हैं। एक पर्याय से हम पूरा द्रव्य देख रहे हैं, जैसे हम जब कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव है या रागी जीव है, क्रोधी जीव है, तो हम क्या करें, एक पर्याय रूप से पूरा द्रव्य को उसमें डाल रहे हैं। अगर हम ये रागी है कि क्रोधी है कि मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि सब हमने गौण कर दिया तो ये जीव द्रव्य की बात चल रही, ऐसा हम कहेंगे तो हम उसको द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं। तो ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेद से दो प्रकार का है। कौन दो प्रकार का है? नए, जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्य, द्रव्य क्या है? वो अनादि से अनंत काल तक जो पर्यायों का एक अखंड प्रवाह है, यानी जो पहले किसी पर्यायों को प्राप्त हुआ था, वर्तमान में प्राप्त है और भविष्य में भी प्राप्त होगा, यानी पर्याय के बिना का द्रव्य तीन काल में नहीं होगा। परंतु यहाँ क्या कहते हैं, वे द्रव्य किसको कहना है उसकी बात आ गई। अब द्रव्य ही जिसका अर्थ यानी प्रयोजन हो उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। यह हम पर्यायों की चर्चा नहीं करेंगे, द्रव्य की ही चर्चा करेंगे। चर्चा हम पर्याय की करें या द्रव्य की करें, ये गुण पर्यायात्मक पूरा ही द्रव्य का जो स्वरूप है तो हमेशा कायम रहने वाला है। हम किसको मुख्य करके उसकी बात कर रहे हैं उसको यहाँ नए कहेंगे। परि अर्थात भेद को जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। ये परि पर्याय ने भेद, भेद को पर्याय कहना, ये हमारी आज की एक समय की पर्याय, दो समय की पर्याय, तीन समय की पर्याय, उसको तो पर्याय कहते ही कहते हैं, वो काल अपेक्षा भेद हुआ। अनादि अनंत जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उसमें एक एक समय की अवस्था अलग अलग है, उस अवस्था को भी भेद पर्याय कहते हैं। परंतु वो कौन सा भेद हुआ? काल अपेक्षा भेद हुआ। अभी जो अपनी बात चल रही है प्रवचन सार में, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीन अंश है और तीनों को पर्याय कहा है, ये भेद को पर्याय कहेंगे, क्योंकि हमने तीन भेद किए, क्योंकि वहां एक समय में तीन पर्याय कहाँ है, तो तीन भेद है उसको वहां बताना है। ख्याल है ना? वर्तमान की वैसे देखेंगे तो उत्पाद वाली जो पर्याय वो तो अभी अब यानी सत रूप से है, विद्यमान रूप से है, व्यय है, व्यय है, पर जिस पर्याय का व्यय हुआ वो पर्याय नहीं है, परंतु व्यय नाम का अंश है, हाँ, तो उसको भी यहाँ पर्याय कहा, भेद का, तो भेद को पर्याय कहते हैं। जैसे अनंत गुणों का अखंड एक अभेद पिंड, उसको हमने द्रव्य कहा, तो ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये क्या किया हमने, उसमें भेद किया, तो भेद किया तो हम क्या कहेंगे, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। हमने अनंत गुणों का स्वीकार किया और उसके भेद का लक्ष्य मिटा दिया, सबको इकट्ठा अभेद अखंड आत्मा का हमने विचार किया, तो वो हम द्रव्यार्थिक का उसमें विषय चल रहा है। ख्याल है? भेद, भेद का अर्थ यानी पर्याय का अर्थ, कोई भी भेद, भले वो प्रदेशों में भेद करो, क्षेत्र में भेद करो, या सामान्य विषय विशेष ऐसा भेद करो उसमें, या गुणों में भेद करो, पर्यायों में भेद करो, एक समय की पर्याय ले लो, तो ये सभी पर्यायार्थिक नय के विषय होंगे। हाँ, पर्यायार्थिक नय का विषय, गुणों के भेद को भी समय सार में है ना, आत्मा ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, क्या आत्मा में कुछ नहीं? आत्मा में सब कुछ है, परंतु ये भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। नयों की भी बात आती है ना, आत्मा में नए नए निक्षेप नहीं, कुछ नहीं, अरे क्या सबसे रहित है, उसके विकल्प, उसके भेद ऐसे ही, वो नहीं है उसमें, वहां विकल्प है ना, उसके विचार नहीं।
आत्मा में भेद नहीं ऐसा नहीं है, भेद भी है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से जब बात करेंगे तो भेद नहीं कहेंगे हम। जब मेरा भारत महान कहते हैं तो क्या हमको भेद दिखते हैं क्या? तब भेद नहीं, परंतु भारत कैसा है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, उसका विस्तार कितना है, उसमें कितने सारे राज्य है, तभी तो भेद है उसमें। परंतु जब एकता की बात करेंगे तो भेद के ऊपर से हमारा लक्ष्य हट जाता है और हम इंडियन ऐसा कहेंगे। अब अमेरिका में जाते हैं तो मद्रासी हो या गुजराती हो या कोई भी अन्य प्रांतीय हो, वो क्या कहेंगे? मैं इंडियन हूँ। तो इंडियन यही एक उसकी पहचान है। वाह, अभी पढ़ते आगे। परी अर्थात भेद को जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। वह पर्याय ही जिस नय का प्रयोजन हो उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसको मुख्य करें, किसकी चर्चा करें, क्योंकि हमको द्रव्य कैसा है समझना है, तो सबके भेद से समझेंगे उसको। भेद से समझ में आए तो अभी हम भेद को गौण करेंगे, अब अखंड अभेद की चर्चा करेंगे, अभेद को लक्ष्य में ले लेंगे, क्योंकि द्रव्य तो भेद स्वरूप भी है अभेद स्वरूप भी है। द्रव्य कैसा है समझने के लिए भेदों को जानना बहुत आवश्यक है। यदि भेद उसमें है ही नहीं कहेंगे सर्वथा, तो भी वो ज्ञान झूठा हो जाएगा। भेदों को पहले जानेंगे तो वस्तु कैसी है उसका पता चलेगा। वही वस्तु कैसी है समझ में आ गया, जैसे कोई राजा है कैसा है, दिखने में सुंदर है, बहुत पराक्रमी है, बहुत दानी है, बहुत दयालु है, ये सब विशेषण हमने उसको अलग अलग से समझाए, फिर व्यक्ति ऐसे हम उसको एक एक साथ ग्रहण करेंगे। वैसे ये भेद समझकर फिर अभेद का ग्रहण है। और जब अभेद को ग्रहण करते अभी भेद की चर्चा नहीं करना, क्योंकि वो कर चुके हम। यही होता है ना, क्योंकि विकल्प जो विकल्प का अर्थ है भेद, भेद पर लक्ष्य जाता है तो विकल्प आता है। आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है समझ में आया ना, तो अभी ऐसा है वैसा है क्यों कर रहे हैं, अभी जो है उसको जानो, ऐसा कहते हैं। तो ये तो ये पर्यायार्थिक नय का प्रयोजन क्या है? पर्याय को यानी भेद को जानना या बताना। ये पर्यायार्थिक नय किसको होगा, सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? हाँ, तो क्या पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे? सम्यक दृष्टि देखो तो नय है वो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, यानी वो सम्यक दृष्टि के ही होते, सम्यक ज्ञानी के ही होते हैं। केवल ज्ञानी में, केवल ज्ञान में नहीं नहीं होते। केवल ज्ञान जो जानता है वो युगपत सभी को एक साथ जानता है, प्रमाण ज्ञान है वो। नए मात्र श्रुत ज्ञान में होते, ना मति ज्ञान में होते हैं, ना अवधि ज्ञान में होते हैं, ना मनपरे ज्ञान में होते हैं, और ना ही मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में होते किसी भी, यानी कुश्रुत में भी नहीं होते। ये तो नए सम्यक ज्ञानी के सम्यक ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में होते हैं, क्योंकि वहां एक को गौण और एक को मुख्य करके जानने की उसमें श्रुत ज्ञान की ऐसी स्पेशलिटी है। मति ज्ञान क्या है? जो आवाज है उसको जानेगा, सामने दिख रहा है उसको देख रहा है, ये मति ज्ञान हुआ, इंद्रियों के द्वारे की बात चल रही है हम। और श्रुत ज्ञान में पढ़ते तो शब्द है और भाषित होता है उसका अर्थ। सामने लिखा है शुगर, शक्कर, और हमें वो शक्कर मीठा है, कैसा है, अच्छा है, आज बहुत कम पड़ी थी चाय में, वो याद आती है ना। वो उस संबंधी ज्ञान होना। अब उसमें हम मुख्य गौण करके, मन के द्वारा मुख्य गौण करके उसकी बात कर सकते हैं। देखो, पर्याय ही जिस नय का प्रयोजन उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अब द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है। ये जो सात नय हमने देखे थे उसी में ये चर्चा चलेगी। यहाँ निश्चय व्यवहार की बात नहीं ली है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की ली है। तो द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य ही प्रयोजन है, उसके पर्यायों की बात नहीं है, और पर्यार्थिक नय में हम लेंगे वर्तमान पर्याय वाला जो। तो द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है, नयगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। इसकी चर्चा पहले भी हमने की थी, अभी फिर दोबारा करेंगे। विधि अर्थात सत्ता को छोड़कर प्रतिषेध अर्थात असत्ता भिन्न उपलब्ध नहीं होती, इसलिए विधि मात्र ही तत्व है। यानी जो कुछ पदार्थ है वो सत्स्वरूप है, यानी सत्य को जो स्वीकार करेगा, इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को समस्त का ग्रहण करने वाले होने से संग्रह नय कहते हैं। हमने शॉर्ट में ऐसा लेना, संग्रह ने संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला। और व्यवहार वी और अवहार, अवहार ने भेद, विशेष उसमें भेद करना। तो संग्रह यानी इकट्ठा करना और व्यवहार ने भेद करना, जो सब ग्रुप ग्रुप यानी उसको समा लेने की। जैसे हम उपयोग लक्षण कहेंगे तो उसमें सभी जीव आ गए, तो जीव को हम सभी जीव एक समान है इस अपेक्षा से उसको हम संग्रह नहीं कहेंगे। और उसके यदि हम भेद करेंगे, अभी जीव द्रव्य ही संग्रह नहीं का विषय है, वो व्यवहार नहीं का विषय है, तो जब हम कहेंगे जीव द्रव्य तो सत का वो सत यानी पूरे ही सभी द्रव्य आ गए। सभी द्रव्य में से ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, आकाश है, ऐसे छह हमने अलग अलग जाति अपेक्षा भेद कर दिए। तो इसमें छह द्रव्यों में जीव को अलग निकाला था, इसलिए वो जीव द्रव्य कहते तो व्यवहार नहीं का विषय होगा। वही अगर सभी जीव द्रव्य है, उस संग्रह करने की अपेक्षा से हम उसको देखेंगे तो उसी को हम संग्रह नहीं का विषय कहेंगे। हम किस अपेक्षा से उसको देख रहे हैं? सभी जीवों को इकट्ठा हम लेना चाहते हैं तो वो संग्रह नहीं का विषय होगा। अभी छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य को अलग बताना चाहते हैं तो वही व्यवहार नहीं का विषय होगा। सभी द्रव्यों को इकट्ठा लेने वाला वो सत, ऐसा जो है सत्ता है, जो कुछ है वो सबको हम इकट्ठा करेंगे तो वो हो गया वो संग्रह है, वो सबसे शुद्ध संग्रह है, कोई भेद नहीं किसी में। अभी जीव है क्या, पुद्गल है क्या, धर्म है, उसकी बात बाद में आएगी, पहले है कि नहीं है, इतने ने सत कहेंगे। सत कहते ही उसमें सब कुछ आ गया, जो कुछ है इस विश्व में सब कुछ आ गया, तो वो हमने सबका संग्रह कर दिया, संग्रह नहीं होगा। अब उसी संग्रह में व्यवहार नहीं क्या करेगा, भेद पड़ेगा, ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, उसने भेद कर दिए, ये व्यवहार नहीं हुआ। अब संग्रह ने कहा ये सब जीव है, तो व्यवहार ने कहा नहीं ये मुक्त है, ये संसारी है। अब संग्रह ने कहा ये सब संसारी जीव है, उसने इकट्ठा किया सबको, तो व्यवहार ने क्या किया, हाँ तो ये एक इंद्रिय, ये दो इंद्रिय, ये तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय। तो जो भेद पाड़ना जिसका प्रयोजन है उसको व्यवहार नहीं कहेंगे, और इकट्ठा करना जिसका प्रयोजन है उसको संग्रह नहीं कहेंगे। परंतु वहां उसके पर्यायों की बात नहीं हो रही है, द्रव्य सच हम इकट्ठ ले रहे वहां, उसको द्रव्यार्थिक नय का ये विषय है। देखो हाँ, तो ये समस्त का ग्रहण करने वाला संग्रह नय है, तीन लाइन हो गई। अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती है, इसलिए द्रव्य ही तत्व है, इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। अब जो पदार्थ संग्रह नय ने स्वीकार किया, जाना है, तो संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों के, ग्रहण किए हुए ने जाने हुए। देखो जब जब ज्ञान की बात आती है और वहां ग्रहण की बात आती है तो जाने हुए ऐसा समझना। संग्रह नय के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसके विधि पूर्वक अवहरण करने को, अवहरण करने ने भेद करना, अपहरण नहीं कहा, अवहरण कहा। वी प्लस अवहरण, व्यवहार शब्द कैसा आया, वी प्लस अवहार यानी भेद करना, विशेष रूप से यानी उसमें किसी अपेक्षाओं से उसमें भेद डालते हम, तो अवहरण करने को अर्थात भेद करने को व्यवहार कहते हैं। उस व्यवहार के अधीन चलने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता है, दोनों में ने संग्रह और व्यवहार, जो कुछ है वह या तो संग्रह नय या व्यवहार नय का विषय, दोनों को नहीं छोड़ता वो, क्योंकि किसी अपेक्षा वो संग्रह नय का विषय हो सकता है। जैसे हमने जीव द्रव्य कहा तो सभी जीव द्रव्यों को इकट्ठा हम कंसिडर करेंगे, वही संग्रह नय का विषय है। अभी वो ही सत में भेद है, इसलिए वही व्यवहार नय का विषय है। तो इस तरह से जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता, इस तरह जो केवल एक को ही प्राप्त नहीं है अर्थात अनेक को प्राप्त होता है उसे नैगम नहीं कहते हैं। न एकम इति नैगम, अर्थात संग्रह और असंग्रह रूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नैगम नय है। ये तीनों ही नय नित्यवादी है, क्योंकि इन तीनों ही नयों का विषय पर्याय न होने के कारण। क्या कहते हैं ये नित्यवादी क्यों कहा इसको? क्योंकि इसका विषय क्या है? द्रव्य है। यहाँ पर्यायों की बात नहीं ली है। पर्याय की तरफ हम देखेंगे वो तो हमको अनित्य दिखेंगे, यह हम द्रव्य देख रहे हैं तो उसकी कौन सी पर्याय उसकी वो उसमें सब उसकी चर्चा ही नहीं करना यहाँ। तो इसलिए यहाँ द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है? ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नय के भेद है। कौन कौन से? नैगम, संग्रह और व्यवहार। देखो इन तीनों ही नयों का विषय पर्याय न होने के कारण इन तीनों नय के विषय में सामान्य और विशेष काल का अभाव है। काल यानी वो पर्याय, यानी वो वर्तमान की बात कर रहे हैं क्या, भविष्य की बात कर रहे हैं, या सामान्य पने वो अनादि अनंत प्रवाह ले रहे, ऐसी कोई चर्चा उसमें नहीं है। काल का अभाव है यानी क्या, वो जो एक एक समय वाली पर्याय है उसकी बात यहाँ नहीं है, उसकी अवस्थाओं की चर्चा नहीं है यहाँ। द्रव्य सच ले लिया है, वो उसमें गर्भित है परंतु उसकी चर्चा नहीं है, ख्याल है ना? हाँ, उसके इंडिकेशन नहीं करेंगे हम कुछ। इसी को फिर समझाया विशेषार्थ, एवं भूत नय से लेकर विलोम क्रम से। इसका अर्थ क्या है? विलोम का उल्टा क्रम। हाँ, विलोम यानी उल्टा क्रम, उसी को प्रतिलोम भी कहा था और स्टार्टिंग से अंत तक उसको अनुलोम कहा था। तो एवं भूत नय से विलोम क्रम अभी कहेंगे। पहला एवं भूत लिया, उसके आगे का कौन से लेंगे? उल्टा समविरूढ़, उसके पहले का शब्द और उसके पहले का रुजु सूत्र। तो एवं भूत नय से लेकर विलोम क्रम से रुजु सूत्र नय तक पूर्व पूर्व नय सामान्य रूप से और उत्तरोत्तर नय विशेष रूप से वर्तमान कालवर्ती पर्याय को विषय करते हैं। यानी ये सभी नए जो है वो वर्तमान काल को विषय करते हैं, विशेष रूप से, आगे आगे वाले विशेष रूप से। इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नए के विषय नहीं होते, तो किसके विषय होते हैं? पर्यायार्थिक नए के विषय होते हैं, सामान्य काल या विशेष काल। इस विवक्षा से द्रव्यार्थिक नय के तीनों भेदों को नित्यवादी कहा है, क्योंकि उसमें किसी एक काल की बात नहीं की। हमेशा ही वो द्रव्य कहेंगे तो उसमें सभी काल गर्भित है, उसी काल की चर्चा ही नहीं करेंगे, वहां पर्यायों की चर्चा ही नहीं करेंगे। अथवा द्रव्यार्थिक नय में काल भेद की विवक्षा ही नहीं है, इसलिए उसमें सामान्य और विशेष काल का अभाव कहा है। यानी सामान्य काल का या विशेष काल का अभाव है। सामान्य विशेष का अभाव ऐसा नहीं कहा, वो तो द्रव्य सच पूरा लिया वहां। काल कहनी है, पर्याय की बात की है, पर्याय की चर्चा उसमें नहीं आती। यानी पर्याय की अपेक्षा उसमें द्रव्य में कोई हम भेद नहीं पाड़ रहे हैं, उसको वो द्रव्यार्थिक का विषय हो गया। अब ये जो पर्यायार्थिक नय हमने देखे, कौन से चार देखे? रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। हाँ, तो ये कौन से विषय है, किसके विषय? हाँ, ये चार, ये जो अभी हमने चार गिने ना, कौन से चार? हाँ, पर्यायार्थिक नय के विषय कौन कौन से? रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, चार है ना। तो ये चार आगे आगे कैसे सूक्ष्म हो जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म होते हैं क्या है, उसमें क्या क्या दोष आते हैं वगैरह, ये चर्चा अब यहाँ चलेगी। अर्थ नय और व्यंजन यानी शब्द नय के भेद से पर्यायार्थिक नय दो प्रकार का है। पर्यायार्थिक नय के हमने जो चार भेद देखे तो वो बाद में करेंगे, पहले में पहले पर्यायार्थिक नय के दो मेन भेद करेंगे। एक अर्थ ने और एक व्यंजन ने यानी शब्द ने, व्यंजन कहो या शब्द कहो एक ही बात है। तो अर्थ ने और व्यंजन ने ये दो शब्द दो भेद किए। अब ये जो व्यंजन ने है उसके तीन भेद करेंगे, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, यानी उसका मेन मेन भी, उसको भी शब्द नहीं कहते और उस मेन का एक प्रकार उसको भी शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ शब्द न लिखकर व्यंजन लिखा। पहले में पहले व्यवहार जो है ये पर्यायार्थिक नय के दो भेद, अर्थ नय और शब्द व्यंजन नय, व्यंजन नय कहेंगे हम। व्यंजन नय के तीन भेद कहेंगे, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। अब उसकी चर्चा यहाँ से हम देखेंगे। देखो, अर्थ नय और व्यंजन यानी शब्द नय के भेद से पर्यायार्थिक नय दो प्रकार का है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ नय और शब्द नय, जिस नय का विषय अर्थ यानी पदार्थ है, चौक है ना ये, तो चौक नाम का पदार्थ, अभी नाम भूल जाओ, ये वस्तु है यहाँ सामने, ये वस्तु जिस नय का विषय है उसको हम अर्थ नय कहेंगे। और अभी इसके लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया, चौक। तो चौक ये शब्द जिस नय का विषय है उसको शब्द नय कहा। अर्थ नय ने पदार्थ को जो जानता है वो अर्थ नय हुआ, और वो पदार्थ भी कैसा, वर्तमान पर्याय वाला, क्योंकि हमारी पहली में पहली कंडीशन क्या थी, वो वर्तमान पर्याय से युक्त वाला चाहिए। वर्तमान पर्याय वाला जो है पदार्थ जो है वर्तमान पर्याय से युक्त है, पर्याय आर्थिक चल रहा है ना, तो उसको हम काल अपेक्षा आती है वहां, तो उसको हम जान रहे हैं, पदार्थ को जान रहे हैं, वो अर्थ नहीं होगा। अर्थ यानी पदार्थ, उस पदार्थ को बताने वाला जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, उस शब्द को जो जाने वो शब्द नहीं है। दोनों में ख्याल है, डिफरेंस क्या है? नहीं तो ज्ञान की पर्याय को कहते, उसका जो अंश को जानने वाला, तो भी अर्थ को यानी पदार्थ को जो ज्ञान जान रहा है उसको हम अर्थ नहीं कहेंगे, और उस पदार्थ को बताने वाला जो शब्द हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस शब्द को जो विषय करता है, उस शब्द को जो जानता है, उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। इतनी तो बात ख्याल में आई? हाँ, अब इसको पढ़ेंगे हम, ये और क्लियर हो जाएगा अभी आगे। देखो कहते हैं, शंका क्या है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में भेद किस कारण से है, ये मूल प्रश्न हो गया उसका। देखो समाधान, रुजुसूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में होता है, वह काल जिन नयों का मूल आधार है वे पर्यायार्थिक नय है। क्या कहते हैं, रुजुसूत्र, रुजुसूत्र, रुजु यानी सरल, हमने देखा था ना, अब यहाँ वर्तमान को विषय, वर्तमान है उसको रुजुसूत्र कहते हैं, वर्तमान, तो वो वर्तमान को बताने वाला जो है उसको रुजुसूत्र कहते हैं। रुजु शब्द अन्य भी, अन्यत्र भी हमने देखे थे, रुजु गति से जाने वाला, वो विग्रह गति में सीधा जाता है, उसको रुजु गति वाला कहा था। मन परे ज्ञान में भी हमने देखे थे रुजुमति और विपुल मति वाला मन परे ज्ञान, तो ये सीधे सरल अर्थ में रुजु शब्द आता है, वो रुजुता शब्द भी आता है ना, आर्जव, रुजुता धर्म को आर्जव भी कहते हैं। तो ये क्या है, रुजु सूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में होता है, यानी रुजु सूत्र जो वचन है वो किसको बताते हैं, वर्तमान काल को बताते हैं। अब जहां पर वो रुजु सूत्र का वचन नहीं लग सकता, जैसे हमने क्या कहा, हम अभी वर्तमान में मनुष्य भव वाले हैं, तो हमारा रुजु सूत्र कहां से कहां तक चलेगा, अभी जन्म से मरण तक, इस पूरे को हमने वर्तमान कह दिया। जब हम कहते हैं कि रुजु सूत्र नहीं थे, वर्तमान में हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो हमारा वर्तमान हमने चौथे काल से लिया। वर्तमान में हुंडावसर्पिणी काल चल रहा है, तो हमारा पहले काल से छठे काल तक हमने, ये हमारा वर्तमान हुआ, उसके आगे रुजु सूत्र का वचन का विच्छेद हो जाएगा, बराबर। तो रुजु सूत्र वचन वर्तमान को बताने वाला है, काल को बताने वाला है। तो ये पर्यायार्थिक नय का मूल आधार कौन है, तो वर्तमान काल, भले वो स्थूल वर्तमान हो या सूक्ष्म एक समय का वर्तमान हो, तो काल ही जिसका मुख्य आधार है। विच्छेद अथवा अंत जिस काल में होता है उस काल को विच्छेद कहते हैं। वर्तमान वचन को रुजुसूत्र वचन कहते हैं, यानी रुजुसूत्र वचन यानी क्या, वर्तमान को बताने वाला, और उसके विच्छेद को रुजुसूत्र वचन विच्छेद कहते हैं, जहाँ उसका अंत हो जाता है उसको विच्छेद कहेंगे। वह रुजुसूत्र के प्रतिपादक वचनों का विच्छेद रूप काल जिन नयों का मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अभी हमने बात की थी ना, जितना हम वर्तमान कह रहे हैं वो पूरे वर्तमान को हम विषय कर रहे हैं। ये हमारा वर्तमान में मनुष्य भव चल रहा है, तो मनुष्य भव की जो हमने लिमिट बांधी अभी वर्तमान की, तो उतना काल हम उससे ग्रहण करते हैं, हमारा वर्तमान उतना लंबा होगा, 50 साल 60 साल जो कितना है वो हमारा वर्तमान होगा, ख्याल है। अर्थात रुजु सूत्र के प्रतिपादक यानी कहने वाले वचनों के विच्छेद रूप काल से लेकर, यानी विच्छेद रूप काल कभी होता है, अभी हम कहते हैं हमारी 24 ही, तो ऋषभनाथ से लेकर हम चौथा काल लेते हैं, चौथे काल के आदि से, क्योंकि उसके आगे वो रुजु सूत्र का विच्छेद हो जाने वाला है। अभी पहले दूसरा तीसरा काल हम उसमें नहीं ले रहे, हाँ, तो रुजु सूत्र का मर्यादा कौन सी है, जब हम वर्तमान कहते तो चौथे काल यानी आदिनाथ से, अभी वो तीसरे काल के अंत में हुए उसकी बात छोड़ दीजिए, परंतु हम कहाँ से ले रहे हैं वर्तमान, हमारा आदिनाथ से लेकर अभी हम वर्तमान, हम महावीर तक रुकना कि नहीं, महावीर तक रुकना नहीं रुकना, क्योंकि हम हमारा वर्तमान कह रहे हैं, हमको उसमें शामिल करना चाहिए, महावीर तक रुकेंगे तो हम पड़े रहेंगे उसके बाहर, हमारे वर्तमान 24 ही हम देख रहे हैं ना, तो हम भी उसको हमारे वर्तमान में इंक्लूड कर रहे हैं।
हाँ, अगर मनुष्य की बात करेंगे हाँ, तो हम अगर वर्तमान तक ही जाएंगे तो मरण तक नहीं आएंगे,
मनुष्य भव लिया हमने, भव भव तो हमारा उतना चलेगा, तो जैसे हमारी अवसर पीने पीछे से आगे तक चलेगी, पहले काल से लेकर छठे काल तक चलेगी, तो वर्तमान अपना आगे चले जाएगा उतना आगे। हाँ, ये हमारी वर्तमान की डेफिनेशन उतनी हो रही है ना, वर्तमान एक्चुअली एक समय का ही होता है, उसको सूक्ष्म रुजु सूत्र नहीं कहते, और जो हमने ऐसा लंबा लंबा वर्तमान कहा उसको स्थूल रुजु सूत्र कहते हैं। हाँ, मिसगाइडिंग ने, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, मनुष्य भव हमारा वर्तमान भव चल रहा है, तो पूरा मनुष्य भव को हम लेंगे कि नहीं लेंगे उसमें, अभी वर्तमान ज्ञान समय ज्ञान की पर्याय शुद्ध ज्ञान की है कि मति ज्ञान की, उसकी चर्चा करेंगे तो वो सूक्ष्म हो गया, एक समय वाली पर्याय ले लिया, देखो क्या कहते। अर्थात रुजु सूत्र के प्रतिपादक वचनों के विच्छेद रूप काल से लेकर एक समय पर्यंत वस्तु की स्थिति का निश्चय करने वाले पर्यायार्थिक नय हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन पर्यायार्थिक नयों के अतिरिक्त शेष शुद्धाशुद्ध रूप द्रव्यार्थिक नय हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, यही उनमें भेद है। इसको फिर कल लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।